तो कल जो आखिरी चार्ट था वो लगाएंगे आप पर, कल का जो आखिरी चार्ट था जिसमें विज्ञप्ति के तीन प्रकार बताए गए थे, इसके पहले होगा कदा हम यमुना तीरे के पहले होगा, संप्रार्थनात्मिका दयनीय बोधिका मिल गया यहाँ पे आगे। तो कल शायद विज्ञप्ति की चर्चा परसों हुई थी, है ना, और यहां पे हम रुके थे कि जब तक कि भगवान के लिए लोभ न हो, लौल्यम, तब तक हम भगवान की प्राप्ति या कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। वो कौन सा श्लोक था बताइए, आखिरी श्लोक, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतेर न लभ्यते। तो ये लालसा मई प्रार्थना की चर्चा थी, उसके पहले दैन्य बोधिका और संप्रार्थनात्मिका। तो अब 36वां नियम, प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना। और इसे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं स्तब पाठ। जिस रचना में भगवान का गुणगान होता है उसे स्तब कहते हैं। तो ऐसे जो प्रसिद्ध स्तव हैं, जो शास्त्रों में बताए हुए हैं और जो महान भक्तों ने बनाए हुए हैं, ऐसे स्तवों का पाठ करना भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। स्तव, स्तव और भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी दो उदाहरण देते हैं स्तवों के, भगवद गीता और गौतमीय तंत्र। ऐसे कितने ही स्तव हैं, परंतु ऐसे ही उदाहरण दिया हुआ है श्री रूप गोस्वामी ने। और श्रीमद् भागवत में भी अनेक हैं, तो आइए कोई पढ़िएगा। प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना।
विद्वानों के अनुसार भगवद गीता में विशिष्ट 11वें अध्याय में अनेक प्रमाणिक प्रार्थनाएं हैं, जिनमें अर्जुन भगवान के विश्व रूप से प्रार्थना करता है। इसी प्रकार गौतमीय तंत्र के सारे श्लोक प्रार्थनाएं कहलाते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी भगवान की सैकड़ों प्रार्थनाएं हैं। अतः हम भक्त को चाहिए कि अपने उच्चार के लिए
तो ऐसे चुन के हमें इसका उच्चारण करना चाहिए, एक हमारा दैनिक अभ्यास होना चाहिए, हमारी साधना का एक अंग होना चाहिए। और हम लोग करते ही हैं, जैसे सुबह को हम शिक्षाष्टक का उच्चारण करते हैं मंगल आरती के बाद, या तो फिर दर्शन आरती के समय हम गोविंदम आदि पुरुषम इस स्तव के दो श्लोक कम से कम बोलते हैं। ये हमारे कमरे में, हमारे घर में बैठकर भी हमें इन स्तवों का पाठ करना चाहिए। इनमें से दो उदाहरण श्री प्रभुपाद जी ने यहां दिए हैं, इसका लाभ बहुत होता है। आपको याद होगा गजेंद्र अपने आप को किस तरह से बचा पाए, क्यों बचा पाए गजेंद्र? प्रार्थना के द्वारा। लेकिन गजेंद्र ने क्या प्रार्थना की थी? गजेंद्र तो एक हाथी था, हाथी को कैसे प्रार्थना करने की क्षमता होती है? गजेंद्र ने क्यों की वो प्रार्थना, कैसे की, बताइए। लेकिन वो प्रार्थना करने की रचना, जो प्रार्थनाओं को कहने की भी वो क्षमता, वो कहां से आई वो प्रार्थना? पिछले जन्म की प्रार्थनाएं थी वो। पिछले जन्म में गजेंद्र कौन थे? राजा इंद्रद्युम्न। उन्होंने अगस्त्य ऋषि के प्रति एक अपराध किया था, इसलिए उनको ये श्राप मिल गया कि उनको एक हाथी का शरीर प्राप्त हो गया। भगवान की कृपा से उनके पूर्व किए हुए भक्ति के बल पर उनको ये स्मरण हुआ आर्तकाल में। आपातकालीन स्थिति में जब भक्त भगवान को याद करता है तो भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। तो गजेंद्र ने सारी स्तुतियां, जो स्तोत्र हैं, वो कहना शुरू कर दिया। और उस संदर्भ में श्री प्रभुपाद कहते हैं कि भक्तों को चाहिए कि वो भी इसी प्रकार से स्तव और स्तोत्र इन दोनों का पाठ करें, जिससे कि आपातकालीन स्थिति में बहुत काम आ सके। और प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि अगर किसी को कोई दूसरा स्तोत्र या स्तव नहीं मालूम तो हरे कृष्ण महामंत्र पर्याप्त है, क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र ये भी एक प्रार्थना है भगवान से, जिसमें हम राधा रानी और श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि हम सदैव उनके आश्रय में रहे, उनकी सेवा में रहे। तो ऐसे स्तव पाठ के लिए श्री रूप गोस्वामी ने शास्त्रों से उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण स्कंद पुराण का है। स्तव पाठ करने से क्या लाभ होता है, कोई पढ़िएगा स्कंद पुराण।
स्कंद पुराण में तीन प्रार्थनाओं की महिमा का वर्णन इस प्रकार मिलता है। जिन भक्तों की जुबानें भगवान कृष्ण की प्रार्थनाओं से सदैव अलंकृत रहती हैं, उनको महान साधक पुरुष तथा संत भी आदर देते हैं, और ऐसे भक्त वास्तव में देवताओं द्वारा पूजनीय हैं।
तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे भक्त देवताओं से भी महान होते हैं। सारे दुनिया में लोग देवताओं की पूजा करते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, परंतु यहां बताया गया है स्कंद पुराण में कि जो देवता गण हैं वो भी उन शुद्ध भक्तों के प्रति प्रार्थना अर्पण करते हैं। शुद्ध भक्त देवताओं के लिए भी पूजनीय हैं। देवता भक्त हैं परंतु शुद्ध भक्त नहीं है। थोड़े हैं उनमें से जो शुद्ध भक्त हैं, परंतु साधारणतः वह मिश्र भक्त माने जाते हैं, कर्म मिश्र भक्त, क्योंकि भोग की कामना करते हैं, वो ऐश्वर्य चाहते हैं, पद चाहते हैं, उनकी भक्ति पूर्णतया शुद्ध नहीं है। इसलिए वो लोग भक्ति का मूल्य जानते हुए भी उत्तम भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जब वो देखते हैं कि कोई शुद्ध भक्त है तो उसके चरण कमलों में वो प्रार्थना करते हैं, ऐसे शुद्ध भक्त का गुणगान करते हैं। और आगे नरसिंह पुराण से क्या कहा गया है?
नरसिंह पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के पंचामृत के समक्ष पहुंचते ही विभिन्न प्रार्थनाओं का पाठ करने लगता है तो सारे पाप कर्मों के फलों से तुरंत छूट जाता है और बिना किसी संदेह के वैकुंठ लोक जाने का पाप कर्म होता है।
तो देखिए ऐसे स्तवों का पाठ करने से लाभ कितना होता है कि प्रवेश द्वार वैकुंठ लोक का खुल जाता है। पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे ना कि दरवाजा जो बंद होता है उसकी कड़ी खुल जाती है। अब आगे जाने का काम या आगे जाने की जिम्मेदारी हमारी है। ऐसा नहीं कि दरवाजा खुल गया तो हम पहुंच गए, नहीं, रास्ते में चलने की तकलीफ तो कम से कम करनी होगी। आसान है वैसे, कोई कठिनाई नहीं है, परंतु लोग संसार के आकर्षणों से आकृष्ट होकर पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए समय ज्यादा लगाते हैं। परंतु ऐसे एक अभ्यास करना अगर शुरू किया किसी भक्त ने तो शीघ्र ही वैकुंठ लोक में प्रवेश करने के लिए योग्य हो जाएगा। तो अब सत्ताईस प्रसाद ग्रहण करना, इसके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं नैवेद्य आस्वादो, नैवेद्य आस्वादो। नैवेद्य मतलब जो भोग चढ़ाया जाता है भगवान का, आस्वाद मतलब उसका स्वाद लेना, उसको ग्रहण करना। तो भगवान का प्रसाद पाने से क्या लाभ होता है, कोई पढ़िएगा।
जो व्यक्ति प्रसाद को आदर देता है और नियमित रूप से अर्चा विग्रह के सामने से कुछ दूर जाकर चरणामृत के साथ उसको खाता है, चरणामृत वह जल है जो भगवान के चरण कमलों पर अर्पित किया जाता है और जिसमें तुलसी के पौधे के बीज मिले रहते हैं, उसे उन पुण्य कर्मों के फल प्राप्त होते हैं जो 10,000 यज्ञ करने से प्राप्त होते हैं।
एक बार प्रसाद ग्रहण करने से कोटि कोटि, वास्तव में रूप गोस्वामी कहते हैं अयुत कोटि, कितने करोड़ों करोड़ों यज्ञों के लाभ केवल एक बार भगवान का महाप्रसाद ग्रहण करने से प्राप्त होता है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि प्रसाद ग्रहण करने से कितना लाभ है? और हम तो रोज करते हैं ना, हम रोज लेते हैं, तो इसको साधारण नहीं समझना चाहिए। एक बार हम हमारे तिरुपति इस्कॉन केंद्र में गए थे तो उन्होंने उनके प्रसाद हॉल में एक सूचना लगाई हुई थी कि कोई पुराण से कोई श्लोक था जिसका अनुवाद ऐसा था कि जो जितने अनाज के कणों को व्यर्थ गंवाता है उसको उतने जन्म नरक में, उतने हजार जन्म नरक में उसको जन्म लेने पड़ते हैं। तो उस प्रसाद हॉल में कोई भी एक कण प्रसाद भी नहीं फेंकता है, कम से कम उस स्थान में। बाहर जाके सभी भूल जाते हैं, परंतु कम से कम वहां तो कोई वेस्ट नहीं करता है प्रसाद, पूरा अपनी थाली बिल्कुल साफ करके जाते हैं। तो प्रसाद ग्रहण करने से कितना लाभ होता है, भगवान कितने कृपालु हैं कि उन्होंने खाना, खाने जैसे एक साधारण दैनिक कार्य को भी आध्यात्मिक रूप दिया है। केवल खा के हम भगवान के धाम में जा सकते हैं, क्योंकि प्रसाद पवित्र है। हम ये शब्द खाना नहीं इस्तेमाल करते हैं। जब कोई बाहर दुनिया में लोग बात करते हैं, आपने खाना खा लिया, हम लोग ये भी नहीं कहते कि आपने प्रसाद खा लिया। प्रसाद तो बहुत शुद्ध चीज है, केवल खाई नहीं जाती है प्रसाद, प्रसाद का सेवन किया जाता है, प्रसाद को ग्रहण किया जाता है, क्योंकि ये सेवा है। प्रसाद भगवान कृष्ण से अभिन्न है। जिस प्रकार से भगवान के नाम की सेवा की जाती है उच्चारण करके और श्रवण करके, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा की जाती है दर्शन करके, श्रृंगार करके, आरती उतार के इत्यादि, भगवान के शास्त्रों की सेवा की जाती है पढ़ने से, सुन के, उसी प्रकार से प्रसाद जो कि भगवान का ही एक रूप है, इसकी सेवा की जाती है उसको ग्रहण करके, इसलिए उसे सेवन कहते हैं। जो प्रसाद सेवया, ये प्रार्थना है ना, महाप्रसाद, हम जो शरीर अविद्या जाल हम रोज सुबह गाते हैं प्रसाद ग्रहण करने के पहले, तो इस भजन का नाम ही है प्रसाद सेवया, प्रसाद की सेवा है ये। तो हमारे खाने का कार्य भी एक सेवा हो जाता है। और ये भक्तों के अस्त्र शस्त्रों में से बहुत महत्वपूर्ण एक अस्त्र है। माया के विरुद्ध युद्ध में ये महत्वपूर्ण अस्त्र है भक्तों के लिए। जब कोई सेना शत्रु के साथ युद्ध कर रही होती है तो तरह तरह के अस्त्र होते हैं। उसी प्रकार से जब भक्तों की सेना को युद्ध करना है माया के विरुद्ध, तो तरह तरह के अस्त्र होते हैं। उनमें से प्रसाद, कृष्ण प्रसादम, एक महत्वपूर्ण अस्त्र होता है, जिसका प्रयोग बड़े कुशलता से, निपुणता से प्रभुपाद जी ने अमेरिका में किया था, और इसीलिए संस्था की शुरुआत हुई थी। 38वां चरणामृत पान, इसके लिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, पाद्यास्वादो, पाद्य चरणामृत को पाद्य भी कहते हैं, जो भगवान के चरणों से आता है। आस्वादो, पाद्य आस्वादो, जब दोनों को मिलाया जाता है तो पाद्यास्वादो होता है। तो कृपया पढ़िएगा कि चरणामृत क्या है। पहले प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि चरणामृत क्या चीज है। तो ये है चरणामृत। ऐसे एक नियम होना चाहिए कि हर रोज भक्त को कई चीजें करनी चाहिए। हम तो पढ़ चुके हैं कि रोज भगवान का दर्शन तो कम से कम एक बार करना ही चाहिए, हो सके तो दो बार। साथ साथ हमें श्रवण रोज करना चाहिए कथा का, हमें जप या हरिनाम रोज लेना चाहिए, कृष्ण प्रसाद का सेवन रोज करना चाहिए। उसी प्रकार से एक विधि है कि हमें चरणामृत भी रोज ग्रहण करना चाहिए, प्रति दिवस। यहां कृष्ण बलराम मंदिर में आपको पता है कि गुरु पूजा या श्रृंगार दर्शन के तुरंत बाद सभी को चरणामृत दिया जाता है। अगर उस समय हम नहीं ले पाते तो कम से कम किसी दूसरे समय आकर लेना ही चाहिए। तो पद्म पुराण में चरणामृत पान के की महिमा का वर्णन है, कृपया पढ़िएगा।
मंदिर में रखकर चरणामृत का केवल पान कर लेता है, और भगवद्धाम जाने का अधिकारी बन जाते हैं। मंदिर में चरणामृत को एक बड़े बर्तन में रखने की प्रथा है। जो भक्त मंदिर में अर्च विग्रह को प्रणाम करने आते हैं वे अत्यंत निमित भाव से 3 गुण चरणामृत ग्रहण करते हैं और दिव्य आनंद का सुख अनुभव करते हैं।
तो क्या लाभ होता है चरणामृत लेने से? भगवत धाम जाने की का अधिकार हो जाता है। किस व्यक्ति को हो जाता है अधिकार? जिसने जिसकी कोई योग्यता नहीं है, जिसने कोई भी विधि विधानों का पालन नहीं किया है, जिसने कोई पुण्य नहीं किए हैं, कभी दान नहीं दिया है, कभी यज्ञ नहीं किया है, कभी वेदों का पाठ नहीं किया है, कभी भगवान की अर्चना या आराधना नहीं की है, या ऐसे व्यक्ति जिसने कभी कोई पुण्य किया नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी अगर चरणामृत का पान करेगा तो वो वैकुंठ लोक में जाने का अधिकारी व्यक्ति बन जाता है। अच्छा, चरणामृत के बारे में थोड़े श्लोक हैं, उसको कोई लगाएगा? और ये भी महत्वपूर्ण है, जब चरणामृत बांटा जाता है तो कितना देना चाहिए? 3 बूंद ऐसे दाहिने हाथ से स्वीकार करना चाहिए और 1, 2, 3 बूंद देने वालों को इस प्रकार से 3 बूंद देना चाहिए। ये एक प्रथा है। हाँ, इसलिए 3 बार देना चाहिए। इसलिए सबको भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना चाहिए ना। तो चरणामृत के लाभ, पान करने का लाभ, 3 बूंद देने हैं ऐसे बताए। तो ये 2 लाभ चरणामृत के, एक देखिए केवल भौतिक दृष्टि से हो, शारीरिक दृष्टि से, भौतिक नहीं, शारीरिक दृष्टि से, और एक भक्ति की दृष्टि से, शुद्ध भक्ति की दृष्टि से। पहला श्लोक आपको सुना चुके हैं हम एक बार, आपको याद है? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णोपादोदकम पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम्। आप समझ गए ना इसका मतलब? अकाल मृत्यु हरणम, जो अकाल मृत्यु को हर लेता है, सर्व व्याधि विनाशनम, सर्व समस्त प्रकार के रोगों को नाश का नष्ट को नष्ट करता है। विष्णोर पाद उदक, इसलिए इसको कहा जाता है पाद्य, पादोदकम, पीतवा, जो पीता है, पीकर शिरसा धारयामी अहम्, मैं अपने सिर पे से धारण करता हूं। और एक श्लोक इस प्रकार से है, ये तो रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु में से नहीं है दोनों श्लोक है, श्लोक परंतु अन्य जगह से है, परंतु विषय से संबंधित है, इसलिए हम यहां आपको बता रहे हैं। श्री राधा कृष्ण पादोदकम् प्रेम भक्तिदं मुदा भक्ति भावेन वै पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम्। इसका मतलब भी समझ गए आप? अभी तो धीरे धीरे आपको अभ्यास हो रहा है ना, शब्दों का विश्लेषण करना, शब्दार्थ को, शब्दों को अलग करके उनका अर्थ जान लेना। श्री राधा कृष्ण पाद उदकम मतलब अमृत या पानी, जल, तो चरणामृत, राधा कृष्ण के चरणामृत, प्रेम भक्ति दम मुदा दिव्य आनंद, किसका? प्रेम भक्ति का, भक्ति भावे न वही पीतवा, तो राधा कृष्ण के चरणामृत का पान करने से प्रेम प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है उस व्यक्ति को जो कि भक्ति भाव से उसे पीता है। और जो अपने और मैं वही चरणामृत जो है मेरे सर पे धारण करता हूं, शिरसा धारयामि हम। तो हम जब चरणामृत पीते हैं या पर चरणामृत का सेवन करते हैं मंदिर में जाकर, हम केवल इसीलिए नहीं करते कि हमारी कोई व्याधि का नाश हो या हम हमारा समय के जल्द समय से पहले मृत्यु ना हो, हम इसके लिए नहीं पान करते हैं चरणामृत का। हम क्यों पान करते हैं? कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। चरणामृत पान करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अच्छा, आगे अर्चा विग्रह पर चढ़ाए फूलों को तथा अगुरु को सूंघना। एक मिनट है। तो इसमें दो भाग हैं वास्तव में। एक है जो अगुरु या अगरबत्ती जो है धूप, इसके सुगंध को सूंघना, इसको कहते हैं धूप सौरभ्यम। सौरभ मतलब खुशबू, सुगंध। तो इसके दो भाग हैं, एक है धूप सौरभ्यम और दूसरा है माल्य सौरभ्यम। माल्य मतलब माला, फूलों की माला या फूल जो अर्पण किए होते हैं। तो पहला जो उदाहरण है वो हरिभक्ति सुधोदय से है, जिसमें धूप सौरभ्यम की महिमा का वर्णन है। ठीक है, तो कोई पढ़िएगा धूप सौरभ्यम के बारे में। दृष्टांत बड़ा अच्छा है ना? क्या दृष्टांत है इसमें बताइए। बहुत अच्छा। इसका मतलब है कि जैसे जब कोई व्यक्ति को सांप डस लेता है तो प्राय बेहोश ऐसा हो जाता है, तो उसी प्रकार से माया रूपी सांप जब किसी को डस लेता है तो वो व्यक्ति भी प्राय बेहोश जैसा निर्जीव प्राय हो जाता है। कहने के लिए ही जीवित है, खा रहा है, पी रहा है, बोल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, परंतु है नहीं जीवित वास्तव में, क्योंकि भक्ति नहीं है भगवान की। तो जीवित कौन व्यक्ति होता है? जो भगवान की भक्ति करता है उसके अंदर प्राण है, अन्यथा प्राण का क्या मतलब है? केवल सांस लेने से थोड़ी ऐसा कहा जाता है कि वो जीवित है। केवल आदमी अगर खाता है, पीता है, बोलता है, कमाता है, खर्च करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जीवित है। ये तो केवल शारीरिक दृष्टि है, लेकिन वास्तव में अगर कहना है कि कोई जीवित है तो भगवान का भक्त होना चाहिए। तो इस समय सभी बेहोश पड़े हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, जीव जागो, जीव जागो। गोरा चंद बोले फिर आगे, निद्रा माया पिशाची रखोले कि तुम जीव जागो जीव जागो, तुम क्यों सोए हुए हो? माया नाम के चुड़ैल के गोदी में तुम शांति से सोए हुए हो और तुम सोच रहे हो कि बड़े आराम से रह रहे हो। कितना धोखा है, कितना खतरा है तुम्हारे जीवन में, तुम नहीं जानते। तो चलो उठो अभी। तो ऐसे सोए हुए बेहोश बद्ध जीव को जागृत करने के लिए ऐसे अगुरु जो कि भगवान को अर्पण किया जाता है बहुत लाभदायक होता है। ऐसे धूप सौरभ्यम से उसकी चेतना पुनः जागृत हो जाती है, भगवान के प्रति आकर्षण हो जाता है। अच्छा, इस श्लोक की व्याख्या आगे करते हैं प्रभुपाद जी, कोई पढ़िएगा। कौन पढ़ेंगे? भवरोग नष्ट हो जाता है केवल धूप सूंघने से, देखिए। और हमें मंदिर में आते समय कैसे आना चाहिए इसका भी वर्णन है, पढ़िएगा।
मंदिर आने वाला भक्त को चाहिए कि अर्चा विग्रह पर सदैव कुछ न कुछ फल फूल और गुरु अर्पित करे। यदि वह नकद रुपया पैसा नहीं चढ़ा सकता तो उसे कोई अन्य वस्तु चढ़ानी चाहिए। भारत में यह प्रचलन है कि प्रातः काल मंदिर में जाने वाले पुरुष तथा महिलाएं अपने साथ कई वस्तुएं लाते हैं, यहाँ तक कि एक मुट्ठी चावल या आटा भी चढ़ाया जा सकता है। यह विधान है कि जब कोई व्यक्ति किसी साधु के पास या मंदिर में अर्चा विग्रह के दर्शन करने जाए तो भेंट उपहार या चढ़ावा लिए बिना न जाए। यह भेंट अति तुच्छ हो सकती है या अनमोल भी हो सकती है। यहाँ तक कि एक फूल, छोटा सा फल, थोड़ा जल जो भी संभव हो अर्पित करना चाहिए। प्रातः काल जब कोई भक्त अर्चा विग्रह पर भेंट चढ़ाने आता है तो उसे अगुरु की सुगंध सुनने को अवश्य मिलेगी। इससे जगत के सारे विशाल विषय प्रभाव तुरंत दूर हो जाएंगे।
तो देखिए, पहले तो विधि बताई गई है कि हर रोज हमें प्रातः काल जाना चाहिए मंदिर में, और जब मंदिर में जाते हैं कोई चीज लेकर जाते हैं फल फूल अगुरु आदि, और वहां जो अगुरु भगवान को अर्पण किया हुआ है उसको हम सूंघेंगे, और जब सूंघेंगे तो वैकुंठ जाने के अधिकारी हो जाएंगे। मंदिर में जाने से तरह तरह के लाभ, हम ये भी सुन चुके हैं कि जो व्यक्ति एक मुहूर्त या आधा मुहूर्त भी मंदिर में निवास करता है वो कहां जाने का अधिकारी हो जाता है, वो भी वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी हो जाता है। ये भाव का सवाल है। अगर इस वृत्ति से, इस भाव से हम मंदिर में जाएं, हम समझें कि कितना महत्वपूर्ण कार्य हम कर रहे हैं, तब हमारा लाभ बढ़ेगा, हम उसको और गंभीरता से लेंगे। एक छोटे बच्चे को आप 500 रुपए का नोट दीजिए तो उसे पता नहीं है कि 500 रुपए का नोट ये मूल्य क्या है, इसका महत्व क्या है। वो सोचता है ये छोटी सी छोटा कागज का टुकड़ा है, वो उसको फाड़ भी देगा, उससे खेलेगा, कुछ भी करेगा। परंतु एक बड़ा व्यक्ति जानता है कि अरे ये तो 500 रुपए संभाल के रखने चाहिए, फाड़ना नहीं चाहिए इसको, और वो फिर सही तरह से इसका प्रयोग करता है। ठीक उसी प्रकार से जो अज्ञानी व्यक्ति है वो नहीं जानता कि मंदिर जाने से क्या लाभ होगा, और अगर आता भी है मंदिर तो बस आता है और इसको साधारण समझता है, चले जाता है। थोड़ी बहुत पुण्य एक वृत्ति रहती है इसलिए आता है मंदिर में। परंतु जो भक्त वास्तव में जानता है, जो ज्ञानी है, वो समझता है कि मंदिर में आने से, रहने से, दर्शन करने से कितना लाभ होता है। केवल अगुरु सूंघने से हम मुक्त हो जाते हैं इस भौतिक संसार से। और आगे रूप गोस्वामी पद वर्णन कर रहे हैं तंत्र शास्त्रों का उदाहरण देकर माल्य सौरभ्य सौरभ्यम के बारे में। तो माल्य सौरभ्यम पढ़िएगा। कितनी सुंदर बात है। अगर कोई व्यक्ति है जिसने कई पाप किए हैं और वो ऐसे जाके माल्य सौरभ्यम का लाभ उठाता है, भगवान को अर्पण किए हुए फूलों का सुगंध सूंघ लेता है, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर वो पाप मुक्त है पहले से ही, और अगर वो मायावादी भी है, तो क्या हो जाएगा? वो कृष्ण भक्त बन जाएगा। अच्छा, इसके बारे में वो घुमा लेंगे कृपया। इसके बारे में उदाहरण कौन सा आपको याद आ रहा है मन में? चतुष कुमार। तो ये सुंदर श्लोक है जिसमें इस घटना का वर्णन है। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायुः अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषाम् संक्षोभमक्षर जुषाम अपि चित्त तन्वोः तत्वो ने वो तन्वो है हा? तो आखिरी आधा त नहीं, आधा न होना चाहिए। तन्वोः अच्छा, अभी इसका मतलब बताइए, शब्द भेद कीजिए। तस्य, तस्य मतलब उनके, अरविंद नयन कमल नयन, नयनस्य उनका, जिनके की कमल नयन है, मतलब भगवान की बात हो रही है। नयनस्य पदारविंद, ये पदारविंद किनके हैं? जिनके कमल नयन हैं। अरविंद नयनस्य पदारविंद मतलब अरविंद नयन जिनके हैं उनके पदारविंद। किंजल्क, किंजल्क मतलब पैर के अंगूठे, चरणों के अंगूठे। मिश्र तुलसी, मकरंद वायु, मकरंद मतलब नहीं, या इस सुगंध। तो ये सुगंध जो हवा, वायु हो जो हवा बह रही थी, वो हवा किस चीज से मिश्रित हो गई? तुलसी के सुगंध से, जो कि कहां थी? भगवान के चरण कमलों में थी, विशेष करके उनके अंगूठे के पास। तो ये वायु इस मकरंद को, इस सुगंध को लेकर आई और कहां गई? अंतर्गतः स्वविवरेण, स्वविवरेण मतलब अपने नसिकों के भीतर, अंतर्गतः अंदर गई। चकार तेषाम, ऐसे हो गया उनके प्रति, किनके प्रति? जो चार कुमार थे। संक्षोभम तो उनका मन जो है विचलित हो गया, हृदय विचलित हो गया, कुछ कुछ तनाव, कुछ बदल हो, बदली हो गई उनके हृदय में, कुछ परिवर्तन हो गया। अक्षर जुषाम, अक्षर जुषाम मतलब अक्षर, जो निराकार ब्रह्म के उपासक थे, अपि हालांकि वो अक्षर जुषाम थे, निराकार ब्रह्म के उपासक थे, फिर भी चित्त तन्वो हो, चित्त बदल गया, चित्त का परिवर्तन हो गया उनका। केवल जो तुलसी के दल और तुलसी मंजरी अर्पण किए हुए थे भगवान के चरण कमलों में, और वायु भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके आई, तुलसी का सुगंध चार कुमारों के नसिकों तक पहुंच गया और उनके चित्त में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो जब भी आप श्लोक पढ़ेंगे ऐसे, इस प्रकार से श्लोक को समझने का प्रयास कीजिए, शब्द भेद करके, इससे रस बहुत बढ़ेगा, बहुत अच्छी समझ हो जाएगी आपकी, बहुत आनंद आएगा ऐसे करके। अच्छा लगता है आपको शब्द भेद करके, जब समझ में आता है, भले व्याकरण हमें न पता हो कोई बात नहीं, लेकिन एक अंदाज तो आ जाता है ना, पता चल जाता है। तो पढ़िएगा क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी चार कुमारों के बारे में। परंतु भगवान या भगवान के भक्ति से किसी न किसी तरह से संपर्क में आके वो शुद्ध हो जाते हैं। ये चित्र आपने देखा होगा ना श्रीमद् भागवत में, कि भगवान नारायण जो है वो वैकुंठ के द्वार पे खड़े हैं, जय विजय भी खड़े हैं, और चतुष्कुमार चार छोटे से बालक के समान दिखाई पड़ रहे हैं और वो खड़े हैं, उनके जीवन में मोड़ आ गया। मायावादी से, मायावादी वैसे ये तो निर्विशेष ब्रह्मवादी थे। नहीं, वो तो साक्षात भगवान थे, वैकुंठ लोक में गए थे ना, वो वैकुंठ द्वार में गए थे, तो स्वयं भगवान अंदर से बाहर आए। ये मंदिर की बात नहीं हो रही है, साक्षात वैकुंठ की बात हो रही है। जब वो गए थे और वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय ने चार कुमारों को रोक दिया था, तो उस समय चार कुमारों ने उनको श्राप दे दिया कि तुम ऐसे ऋषि मुनियों को भी रोकते हो, तो जाओ तुम्हें भौतिक जगत में, सृष्टि में तुम्हें जन्म लेना होगा। तो जब भगवान ने देखा कोई शोर मच रहा है दरवाजे के बाहर, तो दौड़ के आ गए। हमारे घर के बाहर भी शोर मच रहा होगा तो हम दौड़ के आएंगे ना दरवाजे पे क्या चल रहा है देखने के लिए। तो भगवान भी आए, भगवान को तो पता था, वो तो सर्वज्ञ हैं, लेकिन फिर भी आए। और जैसे आए तो उनके चरण कमलों में सदैव तुलसी मंजरी, तुलसी दल वगैरह होते हैं अर्पण किए हुए। तो ये वायु चतुष्कुमारों को तक पहुंच गई और फिर उनका मन परिवर्तित हो गया। अच्छा, आगे भागवत में क्या कहा गया है। आगे क्योंकि हम अवित्र अपवित्र हो चुके हैं, दुनिया के अन्य गंधों को सूंघ सूंघ के, इस कभी पेट्रोल का गंध, कभी इसका गंध, उसका गंध, यहां वहां सब जाते हैं। तो कभी जब भगवान को अर्पण किए हुए वस्तुओं का सुगंध हम लेते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं। अब चालीसवा नियम है अर्चा विग्रह का स्पर्श। इसे रूप गोस्वामी कहते हैं श्री मूर्तेः स्पर्शनम्, श्री मूर्तेः स्पर्शनम्, पढ़िएगा कोई विष्णु धर्मोत्तर, भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करने का लाभ बतलाया गया है। तो ऐसा क्यों क्यों नियम है? अब समझ लीजिए कि हम कहते हैं भगवान तो सबके हैं, तो सबको पूजा करने की विधि के लिए अवसर प्राप्त होना चाहिए। ये तो सही है कि सभी को अवसर प्राप्त होना चाहिए, परंतु ये सभी को होना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि कोई योग्यता नहीं होनी चाहिए। योग्यता ये नहीं होनी चाहिए कि किस कौन कौन से परिवार में जन्म ले चुका है, या कोई भौतिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से योग्यता की चर्चा होनी चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ आदमी है परंतु उसके अंदर ब्राह्मण के कोई गुण नहीं है, वो पापी है, तो पर उसे अधिकार नहीं होता अर्च्य विग्रह का स्पर्श करने का। परंतु अगर कोई तथाकथित नीच जाति में जन्म लेने लिया हुआ आदमी है परंतु उसके अंदर ब्राह्मण के गुण है, या अगर वो वैष्णव है, तो उसे पूरा अधिकार है श्री विग्रह के चरणों का स्पर्श करना, उनकी सेवा करना। तो जो नियम होते हैं जिनके द्वारा ये निश्चित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अधिकार, किसी व्यक्ति को अधिकार है या नहीं भगवान की पूजा करने का, वो नियम जन्म या शरीर शारीरिक अवस्था पर निर्भर नहीं है। वो उसके गुणों के ऊपर निर्भर है, उसके चित्त के अवस्था के ऊपर निर्भर है। जिस प्रकार से एक साधारण उदाहरण दे सकते हैं कि अगर कोई हॉस्पिटल में डॉक्टरों की आवश्यकता है और विज्ञापन अखबार में छपता है कि हम डॉक्टरों को हम नौकरी देना चाहते हैं, डॉक्टर आइए और आपके एप्लीकेशन वगैरह दे दीजिए, तनख्वाह इतनी होगी वगैरह। और कई डॉक्टर आते हैं जिन्होंने MBBS वगैरह किया हुआ होता है, और एक सज्जन आता है उसको डिग्री नहीं है, और वो कहता है कि आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं, हमें भी अवसर प्राप्त होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? ऐसा भेदभाव नहीं होना, मैं इस जाति का हूं इसलिए आप भेदभाव कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसके लिए? क्यों, मेरे जन्म की वजह से योग्य नहीं हूं? मैं नीचे कुल से हूं इसलिए जन्म मैं योग्य नहीं हूं? किस लिए मैं योग्य नहीं हूं? डिग्री नहीं है, जिस काम के लिए मुझे यहां बुलाया गया या आना है उस काम के लिए मैं योग्य नहीं हूं। भले मैं किसी भी जाति का क्यों ना हो, भले भी किसी भी कोई भी भाषा बोलने वाला क्यों ना हो, उस चीज के लिए मैं योग्य नहीं हूं। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान के श्री विग्रह का स्पर्श करने के लिए भी कोई तो अधिकार चाहिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई शूद्र है या कोई क्या है। साधारणतः शूद्र परिवार में जन्म लेने वाले लोगों के गुण उस प्रकार से होते हैं, इसलिए ऐसे एक नियम बन गया, एक प्रथा बन गई। वास्तव में गलत प्रथा है। हालांकि प्रायः देखा जाता है कि जो जिस प्रकार के परिवार में जन्म लेता है उसी प्रकार के गुण उसमें भी आ जाते हैं, अक्सर देखा जाता है, परंतु सब समय नहीं। कोई अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है तो उसके लिए एक लाभ है ये, क्योंकि उसी प्रकार की संस्कृति में वो जन्म लेता है, उसको पाला पोसा जाता है, तो उस व्यक्ति को ब्राह्मण बनने के लिए बहुत अच्छा अवसर है ये। जिस प्रकार से एक डॉक्टर के घर में जन्म लेने वाला बच्चा, उसके लिए डॉक्टर बनना आसान है, क्योंकि बचपन से ही उसको वो माहौल मिला हुआ है, वो प्रशिक्षण मिल सकता है, परंतु उसे फिर भी आगे चल के पढ़ाई करनी होगी, मेडिकल कॉलेज में एग्जाम पास करके भर्ती होना होगा, फिर मेडिकल कॉलेज के अंदर से जितनी परीक्षाएं हैं उनमें से निकल के पास होना होगा, फिर जाकर वो डॉक्टर बनेगा। उसी प्रकार से कोई ब्राह्मण के घर में भी जन्म लिया हुआ हो परंतु ब्राह्मण के गुण उसमें नहीं है तो ब्राह्मण नहीं कहलाता वो। तो भेदभाव तो होना है, लेकिन भेदभाव किस आधार पे होना है ये चर्चा का विषय है, ये लोग नहीं जानते हैं। लोग एक प्रकार के लोग बड़े कट्टर होते हैं, वो जन्म के आधार पर भेदभाव करना चाहते हैं, मैं जात ब्राह्मण हूं मेरा अधिकार है, और दूसरे ओर ऐसे लोग हैं जो कहते हैं भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सभी को अनुमति दी जानी चाहिए। तो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत क्या है बताइए? भेदभाव नहीं होना चाहिए सही है, लेकिन भेदभाव जाति देश धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। किस आधार पर होना चाहिए? योग्यता के आधार पर, गुणों के आधार पर होना चाहिए। भेदभाव तो हर एक आदमी करता है। अच्छा ये बताइए, अगर जो बोलेंगे भेदभाव नहीं होना चाहिए उनको बोलिए, अगर कोई सड़क से हुआ शराब पीकर उत्पात करने वाले आदमी आपके घर में पहुंच जाए, आप उसको घर में छोड़ेंगे? छोड़ेंगे? रोकेंगे नहीं? आप रोकेंगे ना। तो भगवान के मंदिर में ऐसे शराब पीकर कोई बहुत ही उन्मत्त अवस्था में आता है तो उसको रोकना नहीं चाहिए? अगर आपके घर में जब जाते समय रोकेंगे आप, तो भगवान के घर में आते हुए क्यों नहीं रोकेंगे? तो ऐसी चीजें हैं जो लोग जानते नहीं ठीक से। तो प्रभुपाद इसकी व्याख्या बहुत अच्छी तरह से करते हैं, तो आगे पढ़िएगा। भारत में तो फिर मूल सिद्धांत अभी प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, मूल बात क्या है, आधार क्या है? शुद्धता। कोई भी आदमी पवित्र हो जाए तो वो अंदर जाने के लिए योग्य है, पवित्र न हो तो नहीं जा पाएगा। तो पवित्र होने के लिए जन्म का कोई विचार नहीं है। तो शूद्र आदि लोगों को कभी कभी वर्जित क्यों किया जाता था? क्योंकि उनकी आदतें ठीक नहीं होती थी, आमतौर से अशुद्ध उनका जीवन रहता है। लेकिन अगर शूद्र भी वास्तव में वैष्णवों का संग करके पवित्र बन जाए तो फिर क्यों नहीं अधिकारी हो सकता वो भी? अच्छा इसके बाद में नियम है अर्चा विग्रह का दर्शन। वराह पुराण में इसके बारे में वर्णन है, पढ़िएगा।
जो व्यक्ति वृंदावन जाता है और वहाँ गोविंद देव के आशीर्वाद का दर्शन करता है, वह यमराज के दरबार के मुख होकर देवताओं के निवास स्वर्ग लोक में प्रवेश कर सकता है।
आगे पढ़िए।
इसका अर्थ यह हुआ कि एक सामान्य व्यक्ति भी यदि जिज्ञासा वश वृंदावन जाता है और देवगुरु जो से गोविंद देव के मंदिर का दर्शन करता है तो उसे कुछ लोग ना सही किंतु स्वर्ग लोक को मिल भी जाता है। इसका भाव यह है कि वृंदावन में गोविंद जी के अतिथि का दर्शन करने मात्र से पवित्र जीवन का लाभ पा सकता है।
तो वास्तव में जो व्यक्ति ऐसे करता है आगे चल के उसे भक्ति भी प्राप्त होगी। पुण्य कृताम गतिम, ऐसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि उसे वो गति प्राप्त होती है जो पुण्य करने वालों को होती है। तो पुण्य का पुण्य करने की गति क्या है, अंतिम उद्देश्य क्या है? भक्ति। और यहां वसुंधरा वराह पुराण में हे वसुंधरा, तो वसुंधरा कौन है? पृथ्वी। क्यों? शब्द भेद कीजिए। वसुंधरा ये शब्द कहां से आया? वसु क्या है, वसुन या वसु? क्या है वसु? ऐश्वर्य। वसु है ऐश्वर्य, जिनके भीतर समस्त प्रकार के ऐश्वर्य हैं, वह है वसुंधरा। इसलिए पृथ्वी माता के और भी नाम हैं, धरणी जो धारण करती हैं, धरा, ऐसे कई नाम है। तो केवल भगवान का एक बार दर्शन करने से अगर कोई व्यक्ति भक्त भी नहीं है, भले वो गोलोक वृंदावन नहीं जाएगा, परंतु कम से कम स्वर्ग तो जाएगा केवल दर्शन करने से। देखिए, एक बार दर्शन करके लेकिन कब जाएगा ये पता नहीं, क्योंकि उसने अगर बहुत पाप किए तो हो सकता है पहले पापों को भुगतेगा पहले, फिर आगे चल के पाप क्षीण हो जाएंगे, फिर स्वर्ग में जाएगा। पता नहीं उसके रिकॉर्ड कैसे हैं, उसके खाते में कैसा क्या है, एंट्री कैसे है, कैसी है, वो देखना है। यहाँ वृंदावन में गोविंद देव है ना, वो रूप गोस्वामी के आराध्य देव है, इसलिए वो गोविंद देव की बात करते हैं। रूप गोस्वामी का मंदिर है गोविंद देव मंदिर। अच्छा, आरती दर्शन का, श्री मूर्तेर दर्शनम। श्री मूर्ते दर्शनम, आरती तथा उत्सवों को देखना। पढ़िएगा। केवल आरती के समय जब भगवान का मुख प्रकाशित हो जाता है तो उस समय देखने से, दर्शन करने से लाखों लाखों वर्षों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान ने कितने मार्ग दिए हैं बद्ध जीवों को यहां इस भव बंधन से मुक्त होने के लिए, फिर भी लोग जिद्दी होते हैं तो नहीं आते हैं। प्रभुपाद जी वो एक بیک ٹو گاڈہیڈ میگزین میں ایک کارٹون ایک بھکت نے بنایا تھا جس جو پربھوپاد جی کو بہت اچھا لگا تھا. ایک ویکتی بھکت ہے جو دوسرے ویکتی کو کہہ رہا ہے, پرچار کر رہا ہے, ہاتھ میں مالا لے کر بتا رہا ہے اس کو چینٹ 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 کہ آپ جپیے 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 چینٹ چینٹ چینٹ, اور وہ ویکتی کیا بول رہا ہے کینٹ کینٹ کینٹ, نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا. پربھوپا جی نے ایک بار ایک چٹکلا سنایا تھا کہ دو آدمی تھے اور وہ جھگڑنے لگے, کوئی ترک ہو گیا دونوں کے بیچ میں. ہوا یہ کہ ایک ویکتی کہنے لگا صحیح اتر تو کینچی ہے کینچی, دوسرا کہنے لگا نہیں نہیں صحیح اتر ہے چھری. تو چھری یا کینچی کون سا صحیح اتر ہے, اس کے اوپر بڑا واد ہو گیا اور ایسا جھگڑا ہو گیا کہ مار پیٹ تک پہنچنے لگے. پھر کینچی چھری کینچی چھری کینچی چھری, پھر جو چھری والا ہے اس نے کیا کیا کینچی والے کو اٹھایا اور پاس میں جو ندی تھا ندی میں پھینک دیا. تو چھری والا تو رہ گیا تٹ پر اور وہ کینچی والا بیچارہ ڈوب رہا تھا, اس کو تیرنا بھی نہیں آتا تھا. تو جیسے ڈوب رہا تھا اس کے پران جا رہے تھے, پھر بھی ڈوبتے ڈوبتے اس کا شریر چار اندر چلا گیا تھا, پرنتو کیول دو ہاتھ باہر تھے, دو ہاتھ سے ایسے دکھا رہا تھا نا, میں پران دے دوں گا لیکن یہ میری بات یہی ہے صحیح ہے. تو ایسے کچھ بھی ہو جائے بھلے لیکن کینچی ہی ہے صحیح. اسی پرکار سے لوگ یہاں بولتے ہیں بھائی مجھے نرک میں بھی جانا پڑے تو صحیح وہی ٹھیک ہے وہی جاؤں گا. اتنا سب بھگوان دے رہے ہیں پھر بھی. ایک بار ایک ویکتی تھے, ایک پرچارک ان کے پاس گئے, بھائی تم اتنا شراب نہیں پیو تم نرک میں جاؤ گے اتنا شراب پیو گے تو. اچھا تو میں شراب پیوں گا تو نرک میں جاؤں گا, تو اچھا میرے بھائی بھی پیتے ہیں شراب تو وہ بھی جائیں گے, اچھا یہ میرے متر ہیں وہ پیتے ہیں تو وہ بھی جائیں گے, تو جتنے لوگوں کو جانتے تو ان کا نام بتا وہ سب شراب پینے والے, تو انہوں نے یہ بھی جائیں گے وہ بھی جائیں گے, تو اچھی بات ہے نا پھر ہم سب نرک میں جائیں گے تو اچھا رہے گا, وہاں بھی جائیں گے ہم کیوں رہیں گے یہاں پر, میرے سارے متر سب کو وہاں رہیں گے تو ہم بھی ساتھ میں رہیں گے وہاں پر. تو ایسے وچار ہیں لوگوں کے, کیا کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں. بھگوان اتنے کرپالو ہیں, ایسے ایسے مارگ سلبھ بنا کے دیے ہیں انہوں نے, پھر بھی ضد کر رہے ہیں نہیں چھوڑیں گے مکت نہیں ہوں گے. ادانت گوبھیر وشتانت مشرم گرہ ورتانام, ورت لیا ہے کہ میں سنسار میں اٹک کے ہی رہوں گا مکت نہیں ہوں گا میں, ضد ہے کوئی کچھ بھی بولے کچھ بھی کرے ہم کو اٹک کے رہنا ہی رہنا ہے. پنہ چربتا چربنا نام, میں چباتے رہوں گا جو انادی کال سے چباتے آیا ہوں وہی چباتے رہوں گا وہی سواد لیتے رہوں گا. آگے کیا بولتے ہیں, بول رہے ہیں پربھوپا جی اتسووں کے بارے میں, یہ سب کالپنک ہے یا سچ ہے کیا ہے, کیا لگتا ہے آپ کو سچ ہے, زیادہ بڑھا چڑھا کے تو نہیں بولا نا, کیا لگتا ہے آپ کو ستیہ ہے, شردھا کی بات ہے نا. کیول اتسکتا ماتر سے کوئی چنڈال بھی اگر بھگوان کو देखे जो कि रथ के ऊपर आसीन है, तो वो विष्णु दूत बनने का अधिकारी बन जाता है। तो आगे अग्नि पुराण में क्या कहा गया है? तो जितने हजारों लोग अभी हमारे मंदिर में आते हैं दर्शन करने के लिए, सोचिए कितने भाग्यशाली हैं। बहुत ही विशेष जीव हैं ये। दिल्ली से आते हैं, कोई मेरठ से आते हैं, कोई राजस्थान से आते हैं, कोई कहां से आते हैं। दूसरे कोई देश में ऐसे देखा है आपने? नहीं। इसलिए भारतवर्ष को पुण्य भूमि कहते हैं, इसलिए यहां जन्म लेने का इतना महत्व है। ये संस्कृति है कि स्वाभाविक तौर से लोग आकृष्ट होते हैं मंदिरों आदि में जाने के लिए। अच्छा, अब अगला अध्याय श्रवण तथा स्मरण की विधियां, और अब है अगला नियम श्रवणम। तो श्रवणम की परिभाषा देते हैं रूप गोस्वामी पाद। इस अध्याय में सबसे पहले ये बताएं कि चार विषयों को, चार नियमों का वर्णन है। एक तो है श्रवणम, श्रवण। दूसरा है भगवत कृपा की आशा करना, स्मरण और ध्यान। तो ये चार विषय इस अध्याय में हम पढ़ पाएंगे इसके बारे में। तो श्रवणम की परिभाषा, श्रवणम नाम चरित गुणादि नाम श्रुतिर भवेत। श्रवणम नाम चरित गुणादि नाम श्रुतिर भवेत। तो श्रवण का मतलब क्या है? मतलब श्रुति भवेत, मतलब सुनना। क्या सुनना? भगवान के नाम चरित गुण आदि, इनके बारे में सुनना, इसको श्रवण कहते हैं। हाँ, तो पढ़िएगा कि इस परिभाषा, प्रभुपाद जी परिभाषा की व्याख्या करते हैं।
कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का श्रवण से होता है, जिसे संस्कृत में श्रवण कहा जाता है। सारे लोगों को अवसर मिलने चाहिए कि वे भक्ति टोलियों में भाग लेकर सुन सके। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए यह सुनना श्रवण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई अपने कानों से दिव्य ध्वनि ग्रहण करता है तो वह तुरंत शुद्ध हो जाता है और उसका हृदय भी विमल बन जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने बल देकर कहा है कि यह श्रवण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कलुषित आत्मा को धो डालता है, जिससे मनुष्य भक्ति में प्रवेश करने तथा कृष्ण भावनामृत को समझने के योग्य बन जाता है।
तो चैतन्य महाप्रभु ने कौन से श्लोक में ये कहा है? चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त के दर्पण का मार्जन हो जाता है। अच्छा, इसको कृपया घुमा लेंगे आप चार्ट को। ये नहीं, इसके बाद, इसके पहले होना चाहिए वास्तव। श्रवणम के बारे में है, श्रवणम के चार्ट हैं उसमें। दास्यम श्रवणम, हाँ तो नाम चरित गुण, इस हिसाब से श्रवण के तीन वर्ग होते हैं, नाम श्रवण, चरित्र श्रवण और गुण श्रवण। ठीक है, आप पढ़ पा रहे हैं? श्रवणम, यहां तीन प्रकार के हैं जिनका वर्णन रूप गोस्वामी ने किया है। श्रवणम नाम चरित गुणादि नाम श्रुतिर भवेत, है ना। तो सबसे पहले है नाम श्रवणम, दूसरा है चरित्र श्रवणम और तीसरा है गुण श्रवणम। और इनके नीचे जो लिखा हुआ है वो शास्त्र है या जिसमें से इसके लिए प्रमाण दिया हुआ दे रहे हैं श्री रूप गोस्वामी। ठीक है, तो बाद में जब आपके नोट्स देखेंगे तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि गरुड़ पुराण क्या है, श्रीमद् भागवत क्या है। यह रूप गोस्वामी बता रहे हैं ना, हर एक चीज के लिए उदाहरण दे रहे हैं। तो हम नीचे केवल ताकि आपको भेद करने के लिए अच्छा हो जाए, आसान हो जाए। तो आइए पढ़िए अभी। सबसे पहले नाम श्रवणम का उदाहरण, गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है उसके बारे में। तो इस उदाहरण के बारे में हम पहले भी सुन चुके हैं। भगवान के नाम कीर्तन करने से व्यक्ति माया के बेहोश अवस्था से जागृत होकर पुनः सही होश में स्थित हो सकता है। आगे चरित्र श्रवणम, ये उदाहरण है श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंध से। क्या कहते हैं सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज से, हे राजन। और इस बात का अनुभव तो साक्षात परीक्षित महाराज को था ही प्रत्यक्ष रूप से। क्यों? 7 दिन लगातार परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से भागवत सुना, परंतु बीच बीच में वो लंच ब्रेक लेते रहे क्या, प्रसाद के लिए उठते रहे? ऐसे कभी वर्णन आता है कि एक दिन छुट्टी ली, रात को सोने के लिए छुट्टी, खाने के लिए छुट्टी, कुछ नहीं, कोई छुट्टी नहीं, लगातार सुनते रहे 7 दिन। क्यों? क्योंकि वो इस कृष्ण कथामृत का पान कर रहे थे। जिस अमृत का पान करने से सारे भौतिक भूख प्यास थकावट नींद सब दूर हो जाती है, शोक मोह भय। भागवत में कहा गया है यस्याम वैश्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का आदि श्रवण करता है, कृष्ण परम पुरुषे, तो शोक मोह भयापहा, उसके हृदय में जो शोक मोह और भय है अपहा, वो सब नष्ट हो जाता है। तो भगवान की लीलाओं का श्रवण करने से वो लीला जो है वो नदी नदी के समान है, नदियों के समान, अमृतमय नदियों के समान। जो ऐसे महान आचार्यों के मुखारविंद से बहती हैं, उनके मुखारविंदों की तुलना एक चांद से की गई है। ऐसे बताया जाता है कि चंद्रमा पे अमृत के नदियां बहती हैं, और हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि चंद्रमा पे कुछ नहीं है, केवल बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहां हवा नहीं है, वहां कुछ नहीं है। लेकिन जिस लोग को वो ऐसा समझते हैं वो ऐसा नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार जब महान वैष्णव होते हैं जिनके मुख से हम कृष्ण की लीला सुनते हैं, वो मुख चांद के समान है, और जो अमृत धारा बह रही है उनके मुखारविंद से, वो कृष्ण कथा का अमृत है। इससे व्यक्ति सारे अशुभ चीजों से जैसे कि भूख प्यास भय शोक से मुक्त हो जाता है। और प्रभुपाद जी आगे समझा रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे श्रवणम के मार्ग को बतलाया कि यही कलयुग के लिए उपयुक्त आत्म साक्षात्कार की पद्धति है। अन्य जो पथ हैं जैसे वेदों का पाठ करना, तपस्या करना आदि, बहुत ही मुश्किल है इस युग में करना। और केवल अगर भक्ति के अधिकारी व्यक्तियों से हम ये कृष्ण कथा सुनते रहें, भगवान की लीलाएं सुनते रहें, तो शीघ्र ही हम भी कृष्ण भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसे लोगों से सुनना नहीं चाहिए, प्रभुपाद जी चेतावनी दे रहे हैं, जो ऐसी कथा करते हैं केवल अपनी जीविका के लिए। उससे सब कुछ नष्ट हो जाता है, फिर वो प्रभाव नहीं पड़ेगा उसमें। इस दुनिया में व्यक्ति, प्रभुपाद जी आगे समझा रहे हैं, भौतिक जगत के निम्न श्रेणी के भोग का स्वाद लेने में मग्न हो गए हैं, और इस निम्न श्रेणी के स्वाद को वो तब तक नहीं त्याग सकते जब तक कि उनको एक उच्च श्रेणी का स्वाद न प्राप्त हो जाए। तो उच्च श्रेणी का स्वाद कौन सा है? कृष्ण भक्ति, भगवान के लीलाओं का आदि श्रवण करना, कीर्तन करना। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं ना, परम दृष्टवा निवर्तते। जब ऊंचा स्वाद मिल जाता है तो निम्न श्रेणी का स्वाद आसानी से छूट जाता है। और एक बहुत ही सुंदर बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के बारे में पढ़िएगा जरा। तो भगवद गीता क्या है? अमृत की धारा। क्यों है, किसी चीज को अमृत क्यों कहा जाता है? अमृत, जो हमको मृत अवस्था से परे कर सके, ये अमृत है ना, अमृत। तो भगवद गीता का संदेश जो भली भांति समझ लेता है, उसका आचरण करता है, तो वो मृत्यु के परे हो ही जाएगा। इसलिए भगवद गीता की वाणी जो है ये तो अमृत है, और भगवान कृष्ण के मुखारविंद से ये निकली है, तो अमृत धारा है ये भगवद गीता, कोई साधारण बात नहीं है। और साथ साथ क्योंकि ऐसे वाणी का श्रवण करने से देवी आनंद की प्राप्ति भी होती है हमारे जीवन में, जिसका स्वाद बहुत ही मीठा होता है, इसलिए भी इसे अमृत कहा गया है, क्योंकि अमृत वो चीज है जिसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, बहुत मीठा होता है। अच्छा, और आगे गुण श्रवणम। अब नाम श्रवणम और लीला श्रवणम हो गया, अब गुण श्रवणम श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध का प्रमाण है। पढ़िएगा क्या प्रमाण है ये। तो जो व्यक्ति अपने हृदय के सारे अभद्र और अमंगल चीजों को नष्ट करना चाहता है, उसे भगवान का गुणगान करना चाहिए और सुनना चाहिए। यस्तु उत्तम श्लोक गुणानुवाद संगीयते भीक्षणम अमंगलघ्न। अमंगलघ्न, घ्न मतलब क्या है? नष्ट करना। तो अमंगल नष्ट हो जाता है कैसे? उत्तम श्लोक गुणानुवाद वाद है। उत्तम श्लोक ही भगवान का नाम है, जिनका वर्णन उत्तम श्लोकों से किया जाता है वो उत्तम श्लोक हैं। संगीयते अभीक्षणम, जो सदैव सतत ऐसे भगवान के गुणों का वाद सुनते रहता है, तम एव नित्यम श्रीणुयाद अभीक्षणम। नित्यम हर रोज बार बार जो सुनता रहता है, हर रोज सुनना चाहिए और दिन भर सुनना चाहिए। तो आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि सुबह आप भागवत क्लास में बैठते हैं, फिर यहां गीता क्लास में आते हैं, फिर शाम को भक्ति रसामृत सिंधु की क्लास होती है, और फिर घर में जाके आपको फिर से पढ़ाई करनी पड़ती है। तो आपका जीवन तो आदर्श जीवन है। कोटि कोटि जो मुनि है वो भी आपकी तरह नहीं है भाग्यशाली, क्योंकि आप वो चीज कर रहे हैं जो ये बड़े बड़े मुनि लाखों साल तपस्या करने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो समय कितना, 4 महीने का है ना, 3.5 महीने कोई कम समय नहीं है। 3.5 महीने बिल्कुल चातुर्मास हो गया आपका, तो घर जाएंगे तो ऐसा ही वातावरण बनाए रखिए। आप जहां जाएंगे आपके मंदिरों में ऐसे वातावरण बना लीजिए, भक्तों के आप दल बना लीजिए ऐसे चर्चा करने के लिए, मिलते रहिए हफ्ते में 2 बार 3 बार 4 बार, मंदिर में जाके प्रवचन में आप शामिल होइए, सेवा कीजिए, जप कीर्तन पढ़ाई, इसी माहौल को बनाए रखिए आप। अच्छी बात है। अभी भगवत कृपा की आशा करना, इसके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं तत् कृपेक्षणम। तत् कृपेक्षणम, तत् मतलब उनका, किनका? भगवान का। तत् कृपेक्षणम, भगवत कृपा की आशा करना। कृपेक्षणम, कृपा, कृपे, कृपा ईक्षणम, कृपेक्षणम, कृपेक्षणम। और इसके लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, आप जरा चार्ट को घुमाएंगे, तत्तेनुकंपाम श्लोक को जरा दीजिए। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, तो आपसे निवेदन करेंगे इस श्लोक को आप अवश्य कंठस्थ करें। आप में से कितने भक्तों ने इस श्लोक के बारे में सुना है? तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, है ना, सुना है। इसको अवश्य आप कंठस्थ कीजिए। तो तत्कृतेक्षणम के लिए उन्होंने इस एक श्लोक का प्रमाण दिया हुआ है, और इस श्लोक की व्याख्या बड़े विस्तार से श्री प्रभुपाद जी ने की है। है ये श्लोक बहुत सुंदर। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो, तो नहीं है उसमें कंपाम बिंदु, त नहीं है वहां, त काट माणो माण, सुसमीक्ष माणो त लिखा है क्या मैंने? त लिखा है मैंने, अच्छा सुसमीक्ष माणो, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम, वो बिंदु जरा ठीक से कर लीजिए, कृतम विपाकम अनुकंपां भी ऊपर, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृद्वाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाक। ठीक है, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग् वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक्। तत् ते मतलब वो, अनुकंपा, अनुकंपा का मतलब कृपा मर्सी, सुसमीक्षमाणो जो बहुत ही प्रतीक्षा कर रहे हैं अच्छी तरह से, स्पष्ट रूप से जानते हैं, बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं वो, भुंजान अनुभव कर रहे हैं, एव आत्मकृतम विपाकम, आत्मकृतम, कृतम मतलब किया हुआ, किसने किया हुआ, आत्मा मतलब स्वयं, स्वयं ने किए हुए विपाकम, विपाकम मतलब कार्य, विशेष करके पापों की चर्चा हो रही है, हृदवाग वपुर भीर विदधन नमस्ते, हृद हृदय, वाग वाणी, वपुहु अपने शरीर या कार्य, विदधन नमस्ते हमेशा करना, भगवान को नमस्कार करना, जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाक, जो इस प्रकार से जीता है वो मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। अब और विस्तार में इसको समझाते हैं। आत्मकृतम विपाकम भुंजान, जब ऐसे कोई विकट परिस्थिति हमारे जीवन में आती है तो भक्त को क्या करना चाहिए? यह तो एक निश्चित बात है कि हमारे जीवन का काफी लंबा समय कठिनाइयों का सामना करने में जाता है, है ना। बचपन से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु तक काफी समय हमारा इन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने में जाता है। हम दुखों का निवारण करने की चेष्टा करते हैं, तो किस प्रकार से ऐसे आपत्तियों का सामना करना, ऐसे दुखद परिस्थितियों में हमारी भावना क्या होनी चाहिए और इस समस्या को हमें अवसर के रूप में कैसे परिवर्तित करना चाहिए, जिस अवसर में इसका लाभ उठाकर हम भक्ति में आगे प्रगति करें। जब बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो एक समस्या को लाभ बना लेता है। कोई लोग कहते हैं ये समस्या है, कोई कहता है नहीं नहीं ये तो अवसर है प्रगति करने के लिए। अब देखिए परीक्षा, परीक्षा तो स्कूल में होना ही चाहिए ना। अब एक विद्यार्थी सोचता है अरे ये परीक्षा कितनी मुसीबत है, कितना दुख है, बहुत बड़ा कष्ट है ये, और वो कोसता रहता है, वो अपने स्कूल को कोसता है, अध्यापकों को कोसता है, परीक्षा को कोसता है कि अरे कितना मैं खेल कूद का अच्छा कर रहा था, क्रीड़ा छोड़कर मुझे परीक्षा में बैठना पड़ रहा है। दूसरा विद्यार्थी है जो सोचता है कि परीक्षा तो बहुत अच्छी बात है, क्यों, ये एक अवसर है। किस प्रकार का अवसर, अवसर कौन सा अवसर है ये, परीक्षा किसके लिए अवसर है, और आगे थोड़ा स्पष्ट कीजिए। जो नौवीं कक्षा में विद्यार्थी है उसके लिए परीक्षा अवसर है आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए, दसवीं कक्षा में जाने के लिए। नौवीं कक्षा के परीक्षा के लिए नहीं बैठेगा तो दसवीं में जाएगा कैसे, आगे प्रगति नहीं होगी उसकी, परीक्षा नहीं होगी। तो जो अच्छा विद्यार्थी है वो परीक्षा को कष्ट न समझकर उसे एक अवसर समझता है प्रगति के लिए, उसके हित के लिए, उसके भलाई के लिए, सही है ना। लेकिन दूसरे प्रकार से सोचने वाला व्यक्ति सोचता है कि ये एक बोझ है, परेशानी है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में इतने सारे समस्याएं आती रहती हैं, आते हैं ना, आते हैं नहीं, आते हैं ना, तरह तरह की समस्याएं समय समय पर आती रहती हैं। तो एक व्यक्ति सोचेगा अरे ये क्या है, इतना कष्ट है, ये है वो है, वो सबको कोसता रहेगा, ये व्यक्ति मेरे दुखों का कारण है, उसकी वजह से मेरी ये समस्या हो गई। कभी कभी लोग ऐसे बात करते हैं कि भगवान ही नहीं है, भगवान होते तो हमारे ऊपर ऐसे कष्ट क्यों देते, मैंने क्या किया है जो मेरे साथ ऐसे हो रहा है, वो दूसरे लोग ऐसे दुष्ट हैं लेकिन वो लोग सुखी हैं, मैं अच्छा हूं लेकिन मेरे साथ ऐसे हो रहा है। तरह तरह के विचार लोगों के मन में आते हैं जब वो दुखों का सामना करते हैं। कोई लोग हार मान लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, कोई उदास होकर शराब पीना शुरू कर देते हैं, कोई किसी दूसरे का खून कर देते हैं। तो क्या नहीं करते हैं लोग जब दुख का सामना करते हैं। परंतु भक्त जो होते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो समझते हैं कि दुख का सामना कैसे करना चाहिए या समस्याओं का सामना कैसे करना चाहिए। तो वो कहते हैं दो चीज करने चाहिए, दुखों को भी कैसे एक प्रगति का वाहन या प्रगति के लिए एक निमित्त बनाना चाहिए, ये इस श्लोक में बताया हुआ है। दो चीजें करने चाहिए भक्त को, भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, जब वो ऐसे परिस्थितियों से गुजर रहा है उसे सोचना चाहिए कि जो भी कष्ट आ रहे हैं, भुंजान जो मैं अनुभव कर रहा हूं उसके लिए जिम्मेदार कौन है, मैं स्वयं। आत्मकृतम विपाकम, ये मेरे किए हुए कर्मों के फल हैं, तो कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है सिवाय मेरे। तो किसको दोष दे सकता है वो, जब वो जानता है कि मेरे ही किए हुए कर्मों का फल मुझे मिल रहा है तो दूसरों को दोषी नहीं ठहराएगा। और सोचता है फिर ठीक है, मैंने ऐसे पाप वगैरह किए होंगे, किए हैं इसलिए मुझे ये फल मिल रहे हैं, अब मैं भगवान की अनुकंपा की प्रतीक्षा करूंगा। तत्ते नुकंपाम सुसमीक्ष मानो, यह मतलब। तो ये पहली चीज है जो कि वो करेगा, क्या करेगा, भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करेगा अपने दुखों को झेलते हुए, और ये समझते हुए कि ये दुखों का कारण कौन है, मैं स्वयं हूं। ये दुख जो आए हैं ये भी भगवान की कृपा है, और इनका सामना करेंगे तो आगे चल के भी भगवान की कृपा आएगी। इन दुखों से राहत मिलना है तो वो भी भगवान की कृपा है, और दुख आएंगे वो भी भगवान की कृपा है। हर चीज से भगवान जो के भक्त जो हैं, वो भगवान की कृपा को ही देखते हैं, सब जगह हर अवस्था में, चाहे वो तथाकथित अच्छा हो या बुरा। तो ये पहली बात। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि बस वो ऐसी प्रतीक्षा करते हैं और कुछ करते नहीं है, क्या करते हैं, हृद वाक वपुह भी, अपने हृदय से, अपने वाणी से, अपने कार्यों से भगवान को नमस्कार करते हैं। मन ही मन में भगवान का स्मरण करते हैं, काया से, अपने शरीर से, वपुहु, और बारंबार करना चाहिए अपने मन में, नमस्कार करना चाहिए भगवान को। ऐसे कठिन परिस्थिति में से गुजरते हुए बारंबार भगवान का स्मरण करते हुए उनको नमस्कार करते रहना चाहिए। केवल हमारी भावना की बात है, एटीट्यूड। अगर हमारी भावना या वृत्ति ठीक रही तो ऐसे समस्या को भी हम अवसर मानकर उसको, इसका इस्तेमाल करके हम प्रगति कर सकते हैं भक्ति में। और इन ये दो चीजें हम करेंगे तो क्या लाभ पाएंगे हम, मुक्ति पदे। मुक्ति पद को प्राप्त कर लेंगे। मुक्ति पद शब्द को और एक दृष्टि से भी देखा जा सकता है, जिनके पदों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, जिनको जिनके पदों में मुक्ति आश्रय लेती है, कौन है वो, कृष्ण, मुक्ति पद। कृष्ण की बात हो रही है, मुक्ति पद तो कृष्ण है, और मुक्ति पद अगर यह भी मान ले कि मुक्ति की अवस्था है तो मुक्ति की परिभाषा क्या है यह हमें जाननी चाहिए। हम परिभाषा कर चुके हैं ना मुक्ति की, आप बताइए मुक्ति की परिभाषा क्या है वैष्णवों के लिए, आगे एक बार हम कर चुके हैं। हाँ, परिभाषा क्या, श्लोक कौन सा है, लाइन, हाँ पूरा श्लोक, मुक्तिर हित मान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति है। तो अन्य चीजों को त्याग कर, उपाधियों को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होना, यही मुक्ति है। तो मुक्ति मतलब श्री कृष्ण का भक्त बन जाना। जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति कर रहा है वो मुक्त है, क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित है। और यहां शब्द है दाय भाग। दाय भाग मतलब जायदाद जब किसको मिलती है, कोई व्यक्ति है तो जब कोई व्यक्ति होता है उसकी जायदाद किसको जाती है, पुत्र को जाती है। पुत्र को क्या करना चाहिए जायदाद लेने के लिए, केवल जीवित रहना चाहिए, है ना। जीवित रहेगा तो खुद ब खुद उसे प्राप्त हो जाएगा ना जायदाद पिता की। इकलौता बच्चा है और कोई है नहीं, अगर उसे पिता की जायदाद चाहिए तो क्या करना होगा, उसे केवल जीवित रहना है। जीवित रहेगा तो मिल जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो जीव भगवान कृष्ण की सेवा करता है, अगर उसे अपने पिता श्री कृष्ण की जायदाद चाहिए तो क्या करना चाहिए, नहीं हाँ कृष्ण भक्ति में जीवित रहना चाहिए। ऐसा श्रीधर स्वामी टीका करते हैं। श्रीधर स्वामी कौन है, भागवत के आदि टीकाकार हैं। इनको चैतन्य महाप्रभु भी बहुत मानते थे। तो भगवान जो है वो अपने भक्तों के हवाले हो जाते हैं, वो भक्तों की संपत्ति हैं। भक्त भगवान को ही प्राप्त कर लेते हैं, भगवान का धन छोड़िए भगवान को ही प्राप्त कर लेते हैं। भगवान के साथ तो उनको सारा धन आ जाता है। केवल व्यक्ति भक्ति करता रहे, भगवान की सेवा करता रहे इस भाव से, ये दो चीजें अगर व्यक्ति करता रहे, कौन सी दो चीजें बताइए, दो चीजें कौन सी हैं ना, ये अभी श्लोक में क्या सुना आपने, हाँ क्या है, क्या करना चाहिए, दो चीजें हैं कौन सी हैं जो जिनका वर्णन श्लोक में है, किस अवस्था में, क्या समझते हुए, नहीं वो बाद में आएगा, ये पहली बात है कृपा की अपेक्षा करेगा, और दूसरी बात उसे क्या करते रहना चाहिए, भगवान को नमस्कार करना चाहिए, हृद्वाग वपुर भीर विदधन नमस्ते। तो ये दो चीजें हैं, भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करना, अपने दुखों को बड़े दुखों को सहन करना इस भाव से कि ये मेरे किए हुए पापों के फल हैं, और दूसरी बात साथ साथ प्रतीक्षा करते हुए अपने हृदय से अपने वाणी से अपने शरीर से भगवान को नमस्कार करना। तो जो व्यक्ति ऐसे करेगा वो मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। वो जानता है कि कभी जो पिता है वो बच्चे को खीर खिलाता है जो बहुत मीठा होता है स्वादिष्ट होता है, और कभी वही पिता जब देखता है कि बच्चे को कोई बीमारी हुई है तो उसे निम्ब जो पत्ते होते हैं उसका रस पिलाता है जो बहुत कड़वा होता है, उसके भलाई के लिए पिलाता है लेकिन बच्चे को बहुत कड़वा लगता है। तो उसी प्रकार से भक्त समझता है कि जो भी हमारे जीवन में होता है वो भगवान की कृपा से ही होता है, चाहे वो तथा कथित सुख की अवस्थाएं हो या दुख की। सुंदर श्लोक है ना, ये अच्छा लगा आपको श्लोक? तो कंटेस्ट करेंगे इसको आप? और प्रभुपाद जी भी बहुत ही सुंदर व्याख्या करते हैं श्लोक का, जरा पढ़िएगा अभी आप। तो ये श्लोक का अनुवाद है और व्याख्या, सबसे पहला ही लाइन व्याख्या में पढ़िए, पढ़िए। हाँ, ये हमारे लिए मार्गदर्शक है, सारे भक्तों के लिए ये श्लोक क्या है? मार्गदर्शक है। किस दृष्टि से मार्गदर्शक है? आगे पढ़िएगा। हाँ, क्या आशा नहीं करनी चाहिए? तुरंत तुरंत राहत, अपने दुष्कर्मों के फल से तुरंत राहत की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, धीरज रखना चाहिए, सहनशील होना चाहिए कि सब कुछ अपने अपने समय पर होगा। हाँ, आगे बढ़िए। ये इस वाक्य को पुनः पढ़िएगा। तो अगली बार जब आपके जीवन में दुख आएगा, और आएगा ना, कष्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो आप क्या करेंगे जब कष्ट आएगा? तो फिर से पढ़िए ये दो लाइन, फिर से पढ़िए दो वाक्य, फिर से पढ़िए आप। क्या है एकमात्र सांत्वना? इसके पहले वाला वाक्य है, ये बस। अभी और कोई पढ़िएगा और आगे पढ़िए, ये इन्हीं दो वाक्यों को कम से कम चार पांच भक्त पढ़िए अलग अलग से। नहीं नहीं, ये दो वाक्य।
जब ऐसे अवरोध आ जाए तो उसे कृष्ण का चिंतन करते हुए कृपा की आशा करनी चाहिए, एकमात्र सांत्वना।
और कोई पढ़िए।
जब ऐसे अवरोध आ जाए तो उसे कृष्ण का चिंतन करते हुए उनकी कृपा की आशा करनी चाहिए, यही एकमात्र सांत्वना।
और कोई? और कोई? तभी याद रहेगा ना सबको, अभी जीवन में उतारना है आपको, तो जल्दी से भगवान से प्रार्थना कीजिए, जल्दी हमें प्रैक्टिस के लिए ऐसे कोई परिस्थिति में डाल दीजिए ताकि अभ्यास करें, प्रैक्टिस कर सके। अभी हमने जो सुना है उसको हम प्रैक्टिस कर सके। वैसे निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, संसार में आ ही जाते हैं, बिन बुलाए सब आ ही जाते हैं, है ना। ढेर सारे समस्या एक के बाद एक आने लगती हैं, जब अगली वाली आएगी समस्या तो क्या करना है, कृष्ण का चिंतन करते हुए कृपा की प्रतीक्षा, और यही एकमात्र हमारी सांत्वना है। और आगे भी जो वाक्य हैं वो भी बहुत सुंदर है, पढ़िए।
यदि भक्त इस पौराशक में दिन बिताता है तो उसका भगवद्धाम रहना निश्चित
है। जय हो। फिर से पढ़िए।
यदि भक्त इस पौराशक में दिन बिताता है तो उसका भगवद्धाम रहना
निश्चित है, तो अपने दिन ऐसे ही काटने चाहिए। आगे पढ़िए। अधिकारी अधिकार हो जाता है, उसका हक बन जाता है। आगे।
जिस श्लोक में दाय भाग शब्द आया है, दाय भाग का अर्थ है पिता की संपत्ति का वैध अधिकारी पुत्र। इसी तरह जो शुद्ध भक्त कृष्ण मानवाधिक कार्यों को करते हुए सभी प्रकार के क्लेशों को सहन करने के लिए तैयार रहता है, वो दिव्य धाम में प्रवेश करने का वैध पात्र बन जाता है।
वैध पात्र, कानूनी ढंग से जाएगा अंदर भगवान के धाम में, कानून तोड़कर नहीं जाया जा सकता भगवान के धाम में। उसको वीजा मिल जाता है, सिटीजनशिप मिल जाता है, नागरिकता मिल जाती है वहां की। ठीक है। और सहन करके क्या करना चाहिए, भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करनी है सहन करते हुए। और क्या करना है साथ साथ, प्रार्थना के साथ साथ हृदवाग वपुर भीर विदधन नमस्ते, अर्थात भगवान का स्मरण करना है, स्मरण करके उनको नमस्कार करना है, भगवान को याद करना है। भगवान प्रैक्टिस के लिए बहुत मौके दे देंगे। ठीक है, अच्छी बात है। तो आज क्लास यही समाप्त करते हैं। और कोई प्रश्न किसी को है? अच्छा, वैसे आज तो आखिरी क्लास होना था लेकिन समाप्त तो हुआ नहीं है, तो अभी आप आ पाएंगे 18 तारीख तक? हाँ ठीक है, तो आज 15 है ना, 16, 17, 18, तो यहां बताना होगा ना भक्तों को जो यहां संभालते हैं कि ये खोलने चाहिए, खोलना चाहिए दरवाजा वगैरह। क्लास लग गया है? अच्छा अच्छा ठीक है। हरे कृष्णा। तो भक्ति रसामृत सिंदूर बहुत सुंदर है ना? हाँ हाँ श्रुतिर भवेत, श्रवणम नाम चरित गुणादी नाम श्रुतिर भवेत, गुणादी नाम श्रुतिर भवेत, श्रवण के बारे में ना, श्रवणम नाम चरित गुणादी नाम श्रुतिर भवेत। फिर भी तो फल प्राप्त होगा। जो कम से कम यहां लिखा है ना, जो कम से कम दर्शन करने आते हैं, तो उनको कम से कम स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, कम से कम। मतलब जो बिना कोई भक्ति भाव के भी आएगा, उसे कम से कम स्वर्ग लोक, प्रभुपाद जी कहते हैं इतना लाभ उसको होगा। लेकिन ऐसा होगा कि बार बार अगर वो कोई मंदिर में आता रहे, भक्तों से मिलता रहे, तो अज्ञात सुकृति बढ़ती जाएगी, और जब बढ़ेगी तो क्या होगा, फिर एक दिन में भक्ति को प्राप्त कर लेगा, भक्तों के संग में आएगा, फिर कथा सुनेगा, कीर्तन करेगा, भक्त बन जाएगा वो भी। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी की जय।